वाणी में एक दोहा आता है, सब जग रूप ब्रह्म का भेद भरम नहीं कोई, मंगत सत तत्व खोजिए फेर जन्म नहीं होए। सब जग रूप ब्रह्म का भेद भरम नहीं कोई, सारा जगत जो नाम रूप में हमको दिखाई पड़ता है या अनुभव में आता है, वास्तव में ये ब्रह्म का रूप है, अर्थात इसमें ब्रह्म व्यापक है, जिसमें ना कोई भेद है ना कोई भ्रम है। कहते हैं कि उस सत तत्व की अर्थात उस ब्रह्म की खोज कीजिए, ताकि फिर ये देह रूपी जन्म धारण ना करना पड़े। आगे वाणी कहती है, सब जग छाया सम कर देखो, सत स्वरूप केवल हर देखो। जो जगत दिखाई पड़ रहा है उसको छाया के समान देखो, और छाया किसकी है? ये कहते हैं कि सत स्वरूप केवल हर देखो, और इसमें केवल सत स्वरूप का दर्शन करो। जिस प्रकार कोई मनुष्य जा रहा हो तो उसकी छाया जमीन पर पड़ती है, तो वाणी जो ये संसार दिखाई पड़ रहा है इसको वो छाया की तरह कहते हैं। वास्तविकता किसकी है? वास्तविकता उस मनुष्य की है जिसकी छाया जमीन पर पड़ रही है। तो उसी प्रकार इस जगत में जिसको ये छाया रूप कह रही है वाणी, इसमें वास्तविकता ईश्वर की है, उस चेतन सत्ता की है, उस आत्म सत्ता की है, जिसको ब्रह्म करके कहा जा रहा है। तो हमारी दृष्टि छाया पर है और वास्तविकता को हमने छोड़ रखा है, इसीलिए सारी जिंदगी हमारी बेचैनी में, दुखों में बीत जाती है, चिंता फिक्र में बीत जाती है। और जिस आनंद की खोज के लिए संसार में आए थे, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, परंतु गलत जगह प्रयास होने के कारण, अज्ञानता के कारण हमको उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती। यद्यपि वो ईश्वर हमको हर वक्त प्राप्त है, लेकिन फिर भी उसका लाभ हम नहीं उठा पाते। जैसे कि कोई छोटा बालक हो, उसके हाथ में कुछ खिलौने दे दिए जाएं, चीनी का ही हाथी दे दिया जाए, चीनी का ही खरगोश दे दिया जाए, चीनी का ही ऊंट दे दिया जाए, चीनी का ही रथ दे दिया जाए, सारे चीनी के खिलौने उसको खेलने के लिए दे दिए जाए। अब वो खेलता भी है, उसके बाद फिर रोता भी है। जब वो रोता है तो माँ चीनी के दो दाने उसके मुंह में डाल देती है, मीठा मीठा जब उसको लगता है वो चुप हो जाता है, फिर खेलने लगता है। लेकिन माँ देखती है, मन ही मन हंसती भी है उस बच्चे की अज्ञानता पर, कि देखो चीनी इसके मुंह में जाते ही ये चुप हो जाता है। लेकिन इसको इस बात का बोध नहीं है कि जिनसे खेला है, जिनको देख के रो रहा है, वो खुद चीनी के बने हुए, केवल चीनी ही वहां है। उसको यदि ये चख ले तो इसका रोना खुद ही खत्म हो जाए। तो वही सब कुछ ये बात कह रहे हैं कि इस देह के अंदर वो ईश्वर मौजूद है। जिस संसार के लिए मैं लालायित हो रहा हूं उसके अंदर वो ईश्वर मौजूद है, लेकिन फिर भी वो ईश्वर मेरी समझ से परे है, मेरे ज्ञान से परे है, और उस ईश्वर के महत्व को ना समझकर मैं संसार के महत्व को समझ रहा हूं। इसी कारण रात दिन बेचैन हूं, एक एक महीना एक एक वर्ष करके मेरी आयु घटती चली आ रही है, और जिस जीवन से मुझको इतना प्यार है, अर्थात जिस शरीर से मुझको इतना प्यार है, वो मेरा प्रिय शरीर छिनने वाला है, इसके प्रति भी मेरा होश गए। आम व्यक्ति अपनी मौत के प्रति गाफिल ही रहता है, इसीलिए बूढ़ा होने के पश्चात भी वो जिस शौक से पैसा कमाता है, जिस शौक से सुख इकट्ठे करता है, उसका शौक बता रहा है कि इसको मौत का होश नहीं। इसीलिए सत्पुरुष विभिन्न तरीकों से हमको समझाते हैं कि देखो ईश्वर रोम रोम में रमा हुआ है, रोम रोम में रमत स्वामी राम नाम भज अंतर्यम। वो जीवन रूप है, वो आनंद रूप है, और जिसने उस अंतर्यामी ईश्वर की खोज इस देह के अंदर की, उसने वह सुख पाया जो कभी भी खत्म नहीं होता। इस मौत रूपी दुख से भी वो मुक्त हो जाता है इस देह के रहते रहते, जैसा कि सत्पुरुषों का जीवन होता है, महाराज जी का जीवन था, अन्य गुरुओं का जीवन था, जो मौत के भय से बिल्कुल मुक्त थे। लेकिन बात बारीक होने के कारण, सूक्ष्म होने के कारण, वो ईश्वर सत्ता सूक्ष्म होने के कारण हमारी आसानी से समझ में नहीं आती। इसीलिए सत्पुरुष ऋषि विभिन्न तरीके अपनाकर हमको ये बात समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि इस माया को छोड़कर मैं मायापति अर्थात ब्रह्म या ईश्वर उसकी खोज करूं, उसको प्राप्त करने की कोशिश। छांदोग्य उपनिषद में एक वार्तालाप आती है, एक ऋषि हुए आरुणी और उनका पुत्र हुआ है श्वेत केतु। तो उनका पुत्र अपने पिता से यही बात पूछा है कि बार बार वो सुनता है ईश्वर है, परंतु फिर भी उसकी ठीक ही समझ में नहीं आ पाता। समझ में कुछ आता भी है तो वो ईश्वर प्राप्त कैसे होगा ये समझ में नहीं आ पाता। उसकी इच्छा तो है, उसके संस्कार भी है, नहीं तो ये बातें वो पिता से पूछता ही। तो पिता उसको कई उदाहरण देकर समझाते हैं कि वो ईश्वर कैसा है, उस ईश्वर का प्रभाव कैसा है, कैसे वो सारे जगत में व्याप्त है, इसको उदाहरण के द्वारा वो समझाते हैं। सबसे पहला उदाहरण वो क्या कहते हैं श्वेत केतु के आगे, उनके सामने एक पेड़ है, तो आरुणी श्वेत केतु से कहते हैं कि बेटा देखो ये जो सामने पेड़ है इसको यदि नीचे से काटा जाए, कुल्हाड़ी का वार इसके तने पर किया जाए, तो उसमें से रस टपकने लगता है, जैसे कि हमारे देह में यदि कहीं काट दिया जाए तो खून निकलने लगता है, उसी प्रकार पेड़ को कहीं से काटा जाए तो उसमें से रस टपकने लगता है। फिर आगे कहते हैं पिता इसको यदि मध्य में से काटा जाए तब भी वहां से रस टपकने लगता है, इसको यदि ऊपर से काटा जाए तब भी वहां से रस टपकने लगता है, परंतु जीवन नहीं निकलता, जीवन नहीं टपकता, वो बना रहता है। वो जीवन जब तक इस वृक्ष के अंदर है तब तक ये वृक्ष पानी पीता है, खुश रहता है, लेकिन जिस डाल को जीवन छोड़ दे इसी वृक्ष की वो डाल सूख जाती है, मर जाती है। यदि और बड़ा एक तना उसको जीवन छोड़ दे तो वो तना भी सूख जाता है, वो भी मर जाता है। उसी प्रकार यदि इस वृक्ष को ही जीवन छोड़ दे तो वृक्ष भी सूख जाता है, मर जाता है। तो वो इस उदाहरण के द्वारा पुत्र को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुझको ये वृक्ष जो दिखाई पड़ रहा है, इसके जो सुख दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी वास्तविकता नहीं है। जिसके कारण ये सुख है वास्तविकता उसकी, तो वृक्ष कब सुखी है? जब उसके अंदर जीवन है। तो सुख जो है वो जीवन का है, वृक्ष का सुख नहीं है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि यदि किसी टहनी किसी डाल को वो जीवन छोड़ दे तो डाल सूख जाती है, वहां कुछ भी नहीं। वृक्ष को यदि जीवन छोड़ दे तो वृक्ष कुछ भी नहीं। तो महत्व जीवन का है, असलियत जीवन की है। सुख जीवन में जो वृक्ष की क्रिया हो रही है पानी सूखने की, वो उस आत्म तत्व के कारण हो रही है, उस जीवन शक्ति के कारण हो रही है। इसलिए महत्व जीवन शक्ति का है, तू उस जीवन शक्ति को देख। तो वही बात हो रही है कि हम संसार को देख रहे हैं, हम वृक्ष को देख रहे हैं, और जो ऋषि है वो जीवन को देख रहा है। इसीलिए इस सरल से उदाहरण के द्वारा वो श्वेत केतु को उस जीवन शक्ति का भेद समझा रहे हैं, जो जीवन शक्ति उस वृक्ष में ओतप्रोत है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वृक्ष में वो ओतप्रोत है, उसी प्रकार सारे संसार में वो जीवन शक्ति ओतप्रोत है। मेरी देह में भी वो जीवन शक्ति ओतप्रोत है। तो देह का जो जीवन है अपना कोई जीवन नहीं, ये जड़ वस्तु है। संसार भी जड़ वस्तु है। इसलिए महाराज जी की वाणी इसको छाया के समान देखने को कह रही है। इस संसार को छाया के समान दे और सत स्वरूप केवल हर दे। और इसके अंदर वास्तव में कि तुम्हें क्या देखना है, उस प्रभु का दर्शन करना है, प्रभु को देखना है जो जीवन रूप है, जिस जीवन से मैं प्रेम करता हूं। आपका जीवन यदि जाने वाला हो, आपकी जान यदि छिनने वाली हो, तो आप बताइए सारा प्रयास आप जीवन को बचाने के लिए करोगे या संसार की दौलत कमाने के लिए करोगे? आप हम अच्छी तरह से जानते हैं, यदि जीवन जाने लगे तो पूरा प्रयास मेरा जीवन बचाने के लिए होता है। इसका मतलब है मैं जानता हूं कि सबसे कीमती वस्तु जो मुझको प्राप्त है वो जीवन है, लेकिन जीते जी मैं छाया का पीछा करता रहता हूं, इस जीवन को भूला रहता हूं। तो आरुणी अपने पुत्र को यही समझा रहे हैं कि महत्व तो जीवन का है। जो कुछ भी तुझको दिखाई पड़ रहा है उसका कारण वो जीवन है, उसका स्रोत वो जीवन है, तो उसको भूले बैठा हुआ है। इसीलिए सारे जगत में वो चेतन सत्ता व्याप्त है। वो चेतन सत्ता जिस वस्तु का त्याग कर देती है वो वस्तु नष्ट हो जाती है। इसलिए महाराज जी कहते थे, प्रेमी सारे जगत के कण कण के अंदर इसकी जो मर्यादा कायम है, इसका जो अस्तित्व कायम है, वो उस सत्ता के कारण है, उस सत्य के कारण है, उस ब्रह्म के कारण है जो जीवन रूप है। तूने जीवन को छोड़ रखा है और इस जड़ को पकड़ रखा है। यही तेरी गफलत है, यही तेरी अज्ञानता है। अब श्वेत केतु फिर पिता से प्रार्थना करता है कि मुझे और समझाइए। एक अन्य उदाहरण के द्वारा मुझको समझाइए उस जीवन सत्ता के बारे में, उसकी तृप्ति नहीं हो रही, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है जब इस जड़ पदार्थ से बुद्धि मुक्त होकर चेतन सत्ता की ओर जा रही है। इसलिए फिर प्रार्थना करता है कि मुझको आगे किसी अन्य उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो पिता दूसरा उदाहरण कहते हैं उसके आगे। वो कहते हैं कि तुम इस बरगद का फल तोड़ कर लाओ। अब वो बरगद का फल तोड़ कर लाता है, फिर पिता कहते हैं उससे, श्वेत केतु इस फल को तोड़ो। फल फल वो तोड़ता है। फिर पिता कहते हैं तुम इसमें क्या देखते हो? वो कहता है इसमें नन्हे नन्हे हजारों बीज, बड़े छोटे छोटे। अब पिता कहता है इसमें से एक बीज को तोड़ो। वो इस एक बीज को तोड़ता है। फिर पिता पूछता है कि बेटा क्या देखते हो? अरे पिताजी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अब अरुणी कहते हैं उसे कि जो चीज तुमको दिखाई नहीं पड़ रही है, इतना विशाल ये वटवृक्ष बरगद का पेड़ उससे ही पैदा हुआ है। इतना बड़ा विशाल वृक्ष तुम्हें जो दिखाई पड़ रहा है, ये उस सूक्ष्म चीज से पैदा हुआ है जो इस बीज के अंदर है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं पड़ रही। वो आगे कहते हैं कि उससे भी सूक्ष्म चेतन सत्ता है जिससे ये सूक्ष्म तत्व उत्पन्न हुआ है, जिससे ये वटवृक्ष तैयार हुआ है। इसीलिए सारी रचना उस जीवन शक्ति के द्वारा प्रकट हो रही है जिसको तुम भूले हुए हो, जिसकी खोज करने की इच्छा तुम्हारे मन में हो रही है। तो इसीलिए जिसने उस जीवन शक्ति का त्याग कर दिया, वो फिर संसार में फंसकर दुखी होकर बेचैन होकर मरता है, उसको कुछ नहीं मिलता। सारी जिंदगी पुरुषार्थ करते करते बेचैनी की कमाई करता है और बेचैनी की कमाई करके अपनी बेचैनी रूपी संपत्ति को साथ लेकर संसार से विदा होता है, उसको चैन नहीं मिलता। ये जन्म तो उसका बर्बाद होता ही है, अगला जन्म भी उसका इसी प्रकार बीतता है, क्योंकि उसने इस जन्म में गलती की है, गलत संस्कारों का निर्माण किया है, वो संस्कार उसको अगले जन्म में भी इसी प्रकार परेशान करेंगे। इसीलिए चाहे कितना भी सूक्ष्म तत्व वो क्यों ना हो, लेकिन सारे जगत की रचना उस सूक्ष्म तत्व से ही प्रकट हुई है। तो महत्व तो रचना का नहीं है, महत्व तो उस जीवन शक्ति का है जो माया के रूप में, संसार के रूप में, नाम रूप में आपको दिखाई पड़ रही। तो जो गुरु है वो सत्ता को देख रहा है, लेकिन जो मैं हूं वो रचना को देख रहा। तो जिसने सत्ता को भुला दिया, उसने याद रखिए आनंद को ही भुला दिया। अब उसने सुख दुख के सागर में गोते खाने, और सुख दुख मनुष्य के जीवन में ईश्वर हुक्म से ही आता है। उसकी रचना भी ईश्वर ने ही की है, इसीलिए की है ताकि सुख दुख के गोते खा खा कर जिस दिन भी ये जीव परेशान होगा, जिस दिन भी ये मनुष्य परेशान होगा, उसी दिन ये मेरी ओर आएगा। इसलिए सारी प्रकृति की जो स्कीम है, सारी प्रकृति का जो विधान है, या यूं कहिए कि सारी प्रकृति की जो योजना है, वो एक ही योजना है कि मनुष्य इस प्रकृति में जो आनंद की तलाश कर रहा है, वो किसी प्रकार एक दिन परम दुखी हो जाए। सारी प्रकृति की एक ही योजना है कि ये मनुष्य जो इस प्रकृति में आनंद की खोज कर रहा है, ये प्रकृति के भोग भोगते भोगते प्रकृति में उलझकर इतना दुखी हो जाए कि फिर ये इस माया को भूलकर मायापति की खोज करने की कोशिश। इसलिए जो जीव भी संसार में आता है वो दुखी होकर ही जीता है, दुख में ही नर जन्म या दुख में ही मर जाए। श्वेत केतु की तृप्ति फिर भी नहीं हो रही है। वो फिर पिता से प्रार्थना करता है, पिताजी मुझे और समझाइए। अब तीसरा उदाहरण उसके आगे वो पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जाओ नमक और पानी लेकर, वो नमक और पानी लेकर आता है। कहते हैं कि ये जो नमक की डेली है इस पानी में डाल, वो पानी में डाल देता है, कहते हैं इसको रखिया, कल सुबह इसको मेरे पास लाना। वो रख देता है, अगले दिन सुबह पिता के पास आता है उस पानी को लेकर। पिता कहता है, बेटा तुमने इसमें नमक डाला था, उसको जरा बाहर निकाला। अब वो देखता है कि वहां तो नमक का डेला कहीं नजर ही नहीं आ रहा। पिता कहता है कि बेटा वो नमक कहां गया? पिताजी बोलते, इसमें भूल गया, तो कहीं नजर नहीं आ रहा। बोले, इस पानी के एक किनारे को जरा चख कर देखो। वो चखता है, उसमें वो नमकीन पानी है। फिर पिता कहता है, जरा बीच में से चक्कर देखो। बीच में से चखता है, वहां भी नमकीन स्वाद है। फिर दूसरे किनारे से पिता कहता है कि यहां चक्कर देखो। चारों तरफ से पानी को चक्कर देखता है, उसको नमकीन ही पानी नजर आता है, लेकिन नमक कहीं नजर नहीं आता। अब क्या होता है, पिता कहता है कि बेटा ये पानी फेंक। अब वो पानी फेंक देता है। अब देखिए, बात बड़ी सरल सी है, इसीलिए बड़े सरल तरीके से पिता अपने बेटे को आध्यात्मिक शिक्षा दे रहा है। कठिन तरीके नहीं अपना रहा है, बड़ा ही सरल तरीका अपना रहा है। बेटा जिस प्रकार नमक नजर नहीं आ रहा है, परंतु तुमने खुद चखकर देखा कि हर जगह इसमें नमक मौजूद है, तुमने जहां से भी पानी चखा वहां नमक मौजूद है, ठीक इसी प्रकार तुम्हारे इस शरीर में और इस जगत में वह ईश्वर उसी प्रकार मौजूद है जिस प्रकार इस पानी के अंदर नमक मौजूद है। इसीलिए गीता में कहा गया, सर्वम वासुदेवम इति। वासुदेव अर्थात प्रभु हर जगह विद्यमान है। रोम रोम में रमत स्वामी, वाणी कह रही। तो आरुणि श्वेत केतु को यही समझा रहे हैं इस सरल उदाहरण के द्वारा कि वो जीवन सत्ता पानी के कण कण में विद्यमान है। चक्कर तुझको पता लग रहा है, देखने से नहीं पता लग रहा। तो मैं इन आंखों से ईश्वर को देखना चाहता हूं, उसका कैसे दर्शन होगा? तो इसीलिए वह सत्ता मेरी देह के अंदर मौजूद है और हर बॉडी के एक हर सेल के अंदर मौजूद है। इसका एक रोमकूप भी वो ऐसा नहीं है देह के अंदर जहां वो सत्ता मौजूद ना हो, वो जीवन शक्ति, वो ईश्वर मौजूद ना हो। महा जिसको शब्द रूप परमेश्वर कहते हैं, वो नाद रूप परमेश्वर इस रोम रोम में उस वो आत्मध्वनि हो रही है इसकी, लेकिन मुझको अनुभव में नहीं आ रही। तो पिता संदेश दे रहे हैं बेटे को कि जिस प्रकार तूने नमक दिखाई ना पड़ने पर भी उसका स्वाद चखा, उसी प्रकार ईश्वर इस देह में दिखाई ना पड़ने पर भी उसका स्वाद तू चख सकता है मन के द्वारा। तो इसलिए सारे ऋषि आत्मा की खोज को देह के अंदर करने के लिए कह रहे हैं, मन के द्वारा खोज करने के लिए कह रहे हैं। अंत में एक और उदाहरण ऋषि ने दिया समझाने के लिए बेटे को। उन्होंने कहा, एक बार गंधार से एक व्यक्ति की आंख बांधकर उसको दूर ले जाकर एक मैदान में छोड़ दिया गया। अब वो घबरा रहा था जब छोड़ दिया गया कि गंधार पता नहीं कहां है, पूरब में है या पश्चिम में है, उत्तर में है या दक्षिण में है, उसको दिशा का ज्ञान ही नहीं क्योंकि उसकी आंख तो बंदी हुई थी। तो एक व्यक्ति उसकी पट्टी खोल देता है, खोलकर एक दिशा बता देता है कि इधर उत्तर दिशा में गंधार है, तुम वहां पहुंच सकते हो। जब दिशा बताता है तब वो उसी ओर चल देता है। हम सब जानते हैं यदि ठीक दिशा की ओर व्यक्ति चले चल दे, ठीक सड़क पकड़ ले तो अपने गंतव्य पर वो जरूर पहुंच जाए। तो आरुणी क्या समझा रहे हैं उसको, तो एक ही बात समझा रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है, वो गुरु है। हम भटके हुए लोग हैं, तो गंधार वो स्थान है जहां का मैं निवासी हूं, जहां से भटककर मैं मैदान में आ गया हूं, जंगल में आ गया हूं, संसार में फंस गया हूं। तो गुरु मार्गदर्शन करता है, गुरु कहता है कि वो प्रभु इस देह के अंदर मौजूद है और मैं भी इस देह के अंदर ही मौजूद हूं। सतगुरु तो अंतर्लग है, पल पल करे पुकार, और मैं तुझको अंदर पुकार रहा हूं लेकिन तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो इसलिए गुरु सरल सा रास्ता बताता है। देखो महाराज जी ने कितना सरल रास्ता बताया, प्रेमी ये जो गुरु मंत्र है ये ब्रह्म रूप है, ये आत्म रूप है, ये गुरु रूप है। बस तूने इसका संग करना है, अर्थात तूने ठीक सड़क पर पैर रख देना है, एक एक कदम जैसे चलता जाएगा मंजिल तेरी नजदीक आने लगेगी। तो हमने मात्र इतना ही करना है कि गुरु हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारा पिता है, उसने जो बात कही है मैं यदि उस पर पूर्ण श्रद्धा करके पूर्ण लगन से पूर्ण मेहनत से उस रास्ते को अपनाता हूं, अर्थात उस मार्ग को तय करता हूं, तो फिर भटकन मेरी खत्म हो जाएगी। सारा रास्ता गुरु दिखाएगा, मार्गदर्शन वो करेगा, लेकिन कब करेगा, जहां उसने पहला कदम रखने को कहा है, जहां वो सड़क पर उसने चलने को कहा है, उस सड़क पर मैं चलना तो शुरू करूं। तो याद रखिए, इस भयानक संसार से, इस भयानक जंगल से मुझको यदि कोई मुक्त कर सकता है तो गुरु का मार्गदर्शन मुक्त कर सकता है। इसलिए जिस प्रकार श्वेत केतु का मार्गदर्शन उसका पिता आरुणि कर रहा है, वो ऋषि कर रहा है, उसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन गुरुदेव कर रहे हैं। हमने यदि उनके मार्गदर्शन को अपनाया, उनके सिमरन को अपनाया और संसार में उसी प्रकार परहेज किया जिस प्रकार वो कह रहे हैं, तब एक दिन हम भी अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, उस ईश्वर का दर्शन इस देह के अंदर ही करने लगेंगे। उसके पश्चात पता लगेगा वो ईश्वर देह में ही नहीं, सारे जगत में, रोम रोम में, हर जगह वो गया। तो वो जो आत्म सुख है उसकी प्राप्ति के लिए मुझको मानुष जन्म दिया गया है। मैं उस काम को छोड़कर जो पैसे की कमाई, संसार में सुखों की कमाई कर रहा हूं, ये मेरी गहरी अज्ञानता है, ये सुख नहीं, मैं दुख की कमाई कर रहा हूं। जिंदगी की सफलता नहीं, जिंदगी को मैं विफल करने में लगा हुआ। इसलिए इस गहरी अज्ञानता से जागें, गहरी नींद से जागें और गुरु के मार्गदर्शन अनुसार चलकर अपना जीवन सफल करें ताकि असली आनंद की प्राप्ति हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम।